एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudaventicest.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudaventicest.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मसीही गीत गाए जा, ऐ मेरे दिल सुन जरा, मसीही गीत गाए जा। मिली नई जो जिंदगी, खुशी के गीत गाए जा। मिली नई जो जिंदगी, खुशी के गीत गाए जा। है मेरे दिल सुन जरा, मसीह गीत गाए जा। है मेरे दिल सुन जरा, मसीह गीत गाए जा। उसे पता चला कि तू पापी है, तो अपने हाथ।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है राजाओं का राजा। आइए हम बाइबल वचन पढ़ते हैं जो कि यिर्मयाह 10 का 10 में मिलता है। यहाँ यिर्मयाह नबी लिखते हैं, परंतु यहोवा ही परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर और सनातन राजा वही है। उसके क्रोध से पृथ्वी कांप उठेगी और जाति जाति के लोग उसका क्रोध सह न सकेंगे। यिर्मयाह 10:10। प्यारो, जल्दी एक दिन पूरा ब्रह्मांड हमारे राजाओं के राजा की अंतिम विजय और धार्मिकता के शाश्वत शासन के उद्घाटन का आनंद पूर्वक जश्न मनाएगा। हमारे अद्भुत परमेश्वर को शास्त्र में एक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। आजकल बहुत से राजा नहीं हैं, इसलिए हमें अपने परमेश्वर के कुछ कार्यों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए राजा की जिम्मेदारियां पर पुनर्विचार करना चाहिए। बाइबल लिखे जाने के दिनों में राजा अपने देश में संप्रभु थे, उसी तरह परमेश्वर के पास एकमात्र अधिकार है। हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। वह हर गतिविधि और नीति को दिशा देता है। कुछ राजा अपने निर्णयों में मनमाने रहे हैं, यहाँ तक कि अपने इरादों में दुष्ट भी रहे हैं। इसके विपरीत हमारा परमेश्वर एक धर्मी राजा है। कुछ राजाओं ने अपने राष्ट्र की महानता में बहुत कम यदि कुछ भी योगदान दिया है, वे केवल नाम मात्र के रहे हैं। लेकिन यह हमारे परमेश्वर के बारे में सच से कोसों दूर है, जिसे हम महिमा का राजा कह सकते हैं। कुछ राजाओं को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा और वे असफल रहे। हमारा परमेश्वर एक राजा है जो सत्य के लिए लड़ाई में लगा हुआ है और उसकी जीत भाइयों सुनिश्चित है। आज का पाठ में हम अपने परमेश्वर को राजाओं के राजा के रूप में देखते हैं। यशायाह 33:22 के अनुसार परमेश्वर के चार सूत्रीय कार्य विवरण यहाँ दिया गया है। यहाँ कहता है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार है। प्यारों, राजा की जिम्मेदारियों का यह बहुआयामी पहलू आज के कई राजाओं के लिए सच नहीं है। अधिकांश शासकों की शक्तियों पर अंकुश लगा होता है। ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति की सीमाओं के कारण ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन प्रभु जो हमारा राजा है वह सक्षम है और वह इन तरीकों के साथ साथ अन्य तरीकों से भी कार्य करता है। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बातचीत करते हुए कहा, क्या परमेश्वर धर्मी लोगों को बुरे लोगों के साथ नष्ट करेंगे? उत्पत्ति 18:25 में हम यह पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। यह अब्राहम का मानना था। ध्यान दें कि धर्मी लोगों का दुष्टों के साथ कष्ट सहना अन्याय होगा। यह भी ध्यान दें कि दुष्टों को कुछ धर्मी लोगों की उपस्थिति के कारण अतिरिक्त अनुग्रह दिया जा सकता है। क्या आपने सोचा है कि जब आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं और उनके आज्ञाकारी होते हैं, तो आपके पड़ोसी आपके बीच उनकी उपस्थिति से लाभान्वित होते हैं। परमेश्वर को संसार की निंदा करने और उसे नष्ट करने में कोई रुचि नहीं है। इसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:17 में। लेकिन जब लोग परमेश्वर की दया को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो दंड अवश्य भावी है। परमेश्वर को कभी कभी ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उसे पसंद नहीं होते। उसका हृदय उसके भीतर घबरा जाता है। ऐसा लिखा है, जब वह पुकारता है, इप्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ, हे इसराइल मैं तुझे कैसे सौंप सकता हूँ। इसे हम पढ़ते हैं होसे 11:8 में। एक राजा अपने लोगों का उद्धारकर्ता भी हो सकता है, वह उन्हें उनके शत्रुओं से बचा सकता है। सभी राजा हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा राजा है जो अपने अधीन आने वालों को बचाने में कभी असफल नहीं होगा। हम पढ़ते हैं 1 तिमोथियस 1:17 में। यहाँ परमेश्वर की 4 विशेषताएं जिक्र की गई हैं, जिसे पौलुस बताता है। 1 तिमोथियस 1:17 में कहता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत्व परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का उपहार जो हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है वह अनंत जीवन है। जीवन एक बहुत ही कीमती वस्तु है। परमेश्वर चाहता है कि यह हमें बहुताय से मिले। हम यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं, इसे यूहन्ना 10:10 में मिलता है। वह जीवन का एकमात्र स्रोत है, यूहन्ना 11:25 कहता है। परमेश्वर का ज्ञान अनंत जीवन की ओर ले जाता है, यूहन्ना 17:3 पढ़िए। इसलिए यह बहुत ही उचित है कि हमारे परमेश्वर को एक अनंत राजा के रूप में दर्शाया जाए। भजन संहिता 145:13 में दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर का राज्य शाश्वत है और उसका प्रभुत्व सभी पीढ़ियों तक बना रहता है। मलाकी 3:6 में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक जैसा ही रहता है। इसलिए हमें यह पूरी उम्मीद है कि वह अपने वादे पूरे करेगा। इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि लोग कितने चंचल होते हैं, इस दुनिया के लोग। हम राजकुमारों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हम इस जीवन में कभी भी किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हो सकते, खास तौर पर धन के बारे में। आप 1 तिमोथियस 6:17 देख सकते हैं। हम सिर्फ इतना निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग पर शासन कर रहा है, कि सभी चीजें उसके नियंत्रण में हैं और कि हम उसकी देखभाल में हैं, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं। हमें इस बात पर बहुत कम भरोसा होना चाहिए कि मनुष्य क्या कर सकता है, और इस बात पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर हर विश्वासी आत्मा के लिए क्या कर सकता है। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन में हम यह पढ़ते हैं, जो कि पृष्ठ 146 में प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे भजन संहिता 24:7-8 में। यहाँ पर हमारा परमेश्वर को महिमा का राजा दर्शाया गया है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ कहता है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। प्यारो, यहाँ पर हमारा परमेश्वर को प्रतापी राजा और सामर्थ्य और पराक्रमी कहा गया है, जो युद्ध में पराक्रमी है। निर्गमन 33:18-19 में परमेश्वर ने मूसा को अपनी महिमा दिखाई। जब परमेश्वर मूसा को अपना महिमा दिखाया, वहां वह अपना चरित्र दर्शाया। परमेश्वर की महिमा उसके दयालु चरित्र में देखी जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि महिमा प्रकाश की बाहरी अभिव्यक्ति है, धन और शक्ति का प्रदर्शन, लेकिन परमेश्वर की महिमा का संबंध उसके आंतरिक अस्तित्व से है। वह जो है वह उसे महिमावान बनाता है। परमेश्वर ने अपनी सारी अच्छाई मूसा के सामने से गुजारी। परमेश्वर की महिमा सिर्फ उसकी भलाई और दया में ही नहीं दिखती, यह बुराई के साथ संघर्ष में भी दिखती है। सत्य हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगा। महिमा का राजा युद्ध में पराक्रमी है, उसकी ताकत का दावा हम कर सकते हैं। अंतिम विजय हमारा होगा परमेश्वर में, जब हम उसमें रहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। दानियल 2:44 में पृथ्वी के राज्यों और परमेश्वर के राज्य के भविष्य के बारे में बताया गया है और अंतर बताया गया है। आइए हम इसे देखें। 44 पद कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का राज अनंत काल का होगा, वह कभी अंत नहीं होगा। लेकिन इस दुनिया के राज्य अंत होते हैं, उसके बाद दूसरा आते हैं। परमेश्वर का राज सदा काल का होने वाला है। वह समय आ रहा है जब परमेश्वर अब और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर कोई तय कर चुका होगा कि वह संघर्ष में किसकी पक्ष लेगा, परमेश्वर का या शैतान का। और परमेश्वर दुष्टों का नाश करेगा और धर्मियों को न्याय दिलाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:20 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है और उसका राज्य जल्द ही स्थापित होगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, यह भविष्यवक्ता यूहन्ना कहता है। प्रकाशित वाक्य 22:20 में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और धर्मियों को ले जाने वाला है, उसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उसके आने के संकेतों पर नजर रखे। मत्ती 24:42 कहता है, हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं क्योंकि भविष्यवाणियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उसके आने का समय जानना हमारे लिए नहीं है, किस दिन आ रहा है, किस समय आ रहा है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग दुनिया की परिस्थिति को देखते हुए जान सकते हैं कि उसका आना शीघ्र है। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि यह अप्रत्याशित होगा। मत्ती 24:44। जबकि हम महिमा के राजा द्वारा शैतान पर की जाने वाली विजय में हिस्सा लेने की आशा करते हैं, हमें उन लाखों पापियों के लिए गहरी चिंता महसूस करनी चाहिए जिन्हें क्षमा नहीं किया गया है, जिनके लिए उस विजय का अर्थ अनंत मृत्यु होगा। उनके लिए हमें विनती करना है, उनसे हमें बातें करना है, उन्हें भी हमें बतलाना है कि सच्चाई के मार्ग वे चुने। धार्मिकता का राज्य आने वाला है। यशाया 32:1 में हम यह पढ़ते हैं, यहाँ कहता है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। यहाँ कहता है परमेश्वर धर्म से राज करेगा और वह न्याय से हुकूमत चलाएगा। धार्मिकता से शासन करो। यशाया यरूशलेम पर आसन असीरियन हमले 31:8-9 पद में हम जो पाते हैं से आगे बढ़कर शांति के समय की ओर मुड़ता है जो उसके बाद आने वाला था। इसी तरह शैतान की सभी ताकतों के परास्त होने के बाद मसीह का धार्मिकता और महिमा में अनंत शासन होगा। यशाया यरूशलेम के लोगों को बोल रहा था कि असीरियन के हमले के बाद परमेश्वर उन्हें बचाएगा और वहां शांति लाएगा। उन्हें उन पर भरोसा करना था। हमेशा की तरह कलेश के बाद शांति और सुरक्षा की भविष्यवाणी की गई तस्वीर आने वाले संसार की महिमा मसीहाई युग के वर्णन में घुल मिल जाती है। इस मसीहाई सेटिंग में राजा मसीह हैं। प्रकाशित वाक्य 19:6-7 में हम पढ़ते हैं कि जब मसीह का राज आएगा और धर्मी लोग वहां होंगे तो उनके लिए आनंद और मगन का समय होगा। वे लोग आनंदित होंगे और मगन होंगे। प्रकाशित वाक्य 21:4 कहता है, वह उनके हरेक आंसू सब आंसू को पोछ डालेगा और वहां ना मृत्यु रहेगी और ना शोक। यशायाह 25 का 9 कहता है, और उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी के बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसके बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। प्यारो, बचाए जाना एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हम में से कुछ लोग शायद ही संभव मानते हों। पौलुस को लगा कि वह पापियों में सबसे बड़ा है, इसे हम पढ़ते हैं, वह लिखा है 1 तिमोथियस 1:15 में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह प्रचुर है। हम पद 14 में पढ़ते हैं, महायाजक यहोशु आग से निकाली गई लकड़ी था, जकरिया 3:2 में हम पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए हर तरह का प्रबंध किया था। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, और हम इस बात पर आनंदित होंगे कि परमेश्वर ने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें बचाया है, वह उसकी शक्ति के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के कारण ही प्रभु के अनंत शासन के दौरान जीना हमारा सौभाग्य हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में रहें। यीशु ने एक अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण दिया है, यूहन्ना 14:1-3 में, वह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है, वह फिर आ रहा है, वह चाहता है कि हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, ताकि हम उसके राज्य में हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लेखक यूहन्ना ने नई बनी हुई पृथ्वी की एक झलक देखी और आत्मा के निमंत्रण को दर्ज किया, जो कोई सुनता है आओ और परमेश्वर से संत में जीवन का पानी पियो। पौलुस कहता है कि इस संसार में हमें जो कष्ट हो सकते हैं वे हमारे लिए कोई बाधा नहीं है, जब हम भविष्य की महिमा पर विचार करते हैं, रोमियो 8:18-19, हमें अपने मन को ऊपर की चीजों पर लगाना सीखना चाहिए, ना कि अपने आसपास की चीजों पर। जब परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा तो आप किन चीजों की प्रतीक्षा करते हैं और क्यों? परमेश्वर ने हमारे लिए जो अद्भुत चीजें तैयार की हैं, उन पर विचार करने से हमारे चुनौतीपूर्ण दैनिक जीवन पर बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ सकता है। प्रकाशित वाक्य 5:12-13 कहता है, यहां जब हम पढ़ते हैं, कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। यह दृश्य उनके अंतिम राज्य अभिषेक का है। आदम और हवा के पतन से पहले वे परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन जब आदम और हवा पाप किए, वे पाप पतित हो गए। वे हमारे उद्धार के लिए, अपना जीवन देने के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, तो उन्होंने स्वर्ग का अपना सिंहासन त्याग दिया था। अब यीशु को फिर से पूरे ब्राह्मण पर प्रभु के रूप में शासन करना है, और पूरा ब्राह्मण उसके राज्याभिषेक को देखने के लिए मौजूद है। जब मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु घोषित किया जाता है, तब उन्हें हर नाम से ऊपर नाम दिया जाता है, तो सभी अच्छे और बुरे उनके सामने नतमस्तक होते हैं। मसीह उन सर्वोच्च सम्मानों के योग्य हैं, क्योंकि वह वध किया हुआ मेमना है। वह हम मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। लंबे समय से चले आ रहे विवाद में सत्य और त्रुटि का हर प्रश्न अब स्पष्ट हो जाएगा। विद्रोह के परिणाम, ईश्वरीय नियमों को दरकिनार करके करने के परिणाम सभी सृजित बुद्धिजीवों के सामने खुले तौर पर रख दिए गए हैं। शैतान के अपने कार्यों ने उसे दोषी ठहराया था। इससे पहले कि ब्राह्मण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया हो। पिता और पुत्र द्वारा मनुष्य के लिए किया गया महान बलिदान, वह समय आ गया है जब मसीह अपने उचित स्थान पर आ जाएगा और प्रधानताओं और सत्यों और हर नाम से ऊपर महिमावान होगा और सिंहासन के चारों ओर श्वेत वस्त्र पहने लोगों से प्रशंसा की गीत उठेगा। प्यारो, इन दिनों हमने परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीखा है। कई बार हम उनकी शक्ति और महिमा के बारे में सोचकर कांप उठे हैं। कई बार हम इस बात से खुश हुए हैं कि ब्राह्मण का हर कण उनके निर्देशन में है। जब हमने आज्ञाकारिता और न्याय के लिए उनके आह्वान का सामना किया तो हमने उन्हें दया और शांति के ईश्वर के रूप में भी जाना। हमारे दिव्य पिता में शक्ति और प्रेम, उत्कृष्टता और व्यक्तिगत मित्रता के गुण समाहित हैं। क्या ये सभी विशेषताएं वास्तव में एक व्यक्ति में मौजूद हो सकती हैं? वे हो सकती हैं और वे हैं। वे हमारे राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर में मौजूद हैं। आज जब आप उनके जन्म का जश्न मना रहे हैं तो उन्हें अपने दिल में राज करने के लिए फिर से आमंत्रित करें। जब आप उन्हें अपने दिल में आमंत्रित करते हैं वे आएंगे और अपने आपके हृदय को शांति और प्रेम और आनंद से भर देंगे। वे राजाओं का राजा है, आपके हृदय में प्रेम से राज्य करेंगे। आइए हम उसके पास आए। चलिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू हम मनुष्य जाति को बनाया और हम पाप में जब गिरे थे तू अपने बेटा को भेजा उन्हें बचाने के लिए। वह फिर से आ रहा है अपने लोगों को ले जाने के लिए, धर्मियों को ले जाने के लिए। फिर से वह तेरे साथ सिंहासन पर बैठ कर धर्मी लोगों के साथ पूरे ब्राह्मण को राज करेगा। हमें तेरे राज में शामिल कर पिता। मेरे श्रोताओं के संग उन्हें आशीष दे, उन सबों को तेरे कदम में चलने के लिए मदद कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaveentist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।